जी बिस्मिल्लाह करें, अब आप सवाल करें। ये हजूर मुर्शिदे करीम का बताया हुआ अमल है कि जब भी ज़हनी तौर पे आपको इनसिक्योरिटी फील हो तो या सलामो या हफीजो या अल्लाह इसका विर्द करें। वैसे तो देखें ना, हमें हुक्म है कि हम या हय्यो या कय्यूम का विर्द करें, लेकिन जब बंदा अपने आप को इनसिक्योर फील करे और हालात उसके काबू में ना हो तो अल्लाह रब्बे करीम ही है जो उसको ये सलामती और हिफाजत अता करता है। तो या सलामो या हफीजो या अल्लाह इसका विर्द करने से बहुत फायदा होगा। जी जनाब, जी वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, माफी चाहता हूँ मैं नहीं सुन पाया, दोबारा कहिए किस कौन से चार महीने?
उर्मत वाले महीने फिर जिक्र है ना, चार उर्मत वाले महीनों का।
जी जी, वहाँ पे वो नाम भी बताए हुए हैं कि भी कौन कौन से महीने हैं, इसमें जंगो जदल नहीं करनी, इसमें एक दूसरे पे मतलब है लूट मार नहीं करनी, इस हवाले से था ना। देखिए वहाँ पे मक्का में चूंकि हजरत इब्राहिम के बाद मतलब हजूर अलैहिस्सलाम से पहले तक क्या था कि इसको बुतखाना बनाया गया था जहाँ पे बुत थे, लोग आते थे यहाँ चढ़ावे चढ़ते थे, तो वो उसके लिए अगर वहाँ पे एक निज़ाम बनाया गया था कि भाई ये चार महीने जो हैं ऐसे कर दो जिसमें लोग आसानी से काबे तक आ सकें, इन तो उसको उन्होंने रिचुअलाइज कर दिया कि जी यहाँ पे कत्लो गारत गरी डाका जनी ये सब हराम है। मतलब ये था कि काबे की तरफ लोग सहूलत से आसानी से आ सकें, तमाम हो चढ़ावे वगैरह चढ़ सकें या कुर्बानियां हो सकें। ठीक है, माफी चाहता हूँ जरा दोबारा कहिए, नहीं समाप्त सुन सका।
हयात से मुराद इंसान का अमर हो जाना है, अमर।
अरे ऐसे ही है, देखिए हर वो पानी जो जिंदगी दे रहा है आबे हयात है, हाँ या नहीं?
सही।
अब मुझे बताएं कुरान में इसका कोई जिक्र है आबे हयात का? भाई देखे ना, कुरान में जिक्र है कि पानी से हयात मिलती है, ठीक है, हाँ या नहीं? अब किसी वो क्या कहते हैं मुसन्निफ को, इस तरह का जो इमेजिनेशन, जिसका इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग था, उसने कहावत घड़ी के जी आबे हयात ऐसा पानी जिसे पी के बंदा अमर हो जाए। अब ये रिवायतें हैं, वो कहा जाता है कि वो सिकंदर को ख्वाहिश हुई तो उसके बाद खिजर ने उसकी रहनुमाई की, वहां ले जाके उसे कहा कि सारी जिंदगी यानी तुम जिंदगी को कैसे बर्दाश्त करोगे। और बाज लोग कहते हैं कि भाई उसने खिजर ने खुद पी लिया और उसे पीने नहीं दिया। अब हजरत खिजर जैसे बंदे पे भी ये धांधली का इल्जाम है, क्या किया खिजर ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई, ये शेर में है। ये हमारे शेर और शायरी की बातें हैं। आबे हयात, देखिए क्या करना क्या है, आपने हमेशा जिंदा रहकर, आपकी रूह तो वैसे ही अमर है, रूह जो है वो अल्लाह के अल्लाह की रूह का एक हिस्सा है। वनफख्तु फीहे मिर रूही, मिनर रूही लिखा हुआ है, पढ़ते मिर रूही। अब ये जो मिर रूही है, रू में से, तो आप तो वैसे ही अमर है, लेकिन आपको अपने इस मादी जिस्म को भी आप अमर बनाना चाहते हैं, ये हो नहीं सकता और ना ही होना चाहिए, वरना तो सारा निजाम तलपट हो जाएगा। ठीक हो गया
जी सर, शुक्रिया, थैंक यू
जी।
अस्सलाम वालेकुम
जी। वालेकुम अस्सलाम।
मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम जिस तरह के सिर्फ एक नाम है और मुख्तलिफ शख्सियतें
बात ये है कि डिप्टी कमिश्नर का ओहदा तकसीम हिंद से पहले भी था, हाँ या नहीं? नहीं, उस वक्त भी गवर्नर होते थे ना। अब हजूर अलैहिस्सलाम के बाद हजरत उमर ने मुख्तलिफ इलाकों में गवर्नर नामजद किए, हाँ या नहीं? तो जब ये गवर्नर नामजद हुए तो क्या हुआ? ये माइक किसी का ऑन है, बच्चे की आवाज बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रही है। जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि गवर्नर का ओहदा जो है वो तो परमानेंट है, ठीक है, निस्बतन इंसान की निस्बत। अब उस ओहदे पे मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोग काम करते हैं कि जी ये डिप्टी कमिश्नर साहब ने मुझे ये खत दिया था 1822 में या 1860 में। अब 1860 में ये 2023 आ गया, तो हम डिप्टी कमिश्नर को क्या कहेंगे कि वो आज भी जिंदा है? नहीं, वो ओहदा जो है वो निजाम में एक ओहदा है, खिजर एक ओहदा है, ठीक है। उस ओहदे पे हर दौर में कोई ना कोई बंदा जाहिर है, अल्लाह मुतमक्किन करता रहता है, किसी को भी अपॉइंट करते, अल्लाह की अपॉइंटमेंट है। तो अब हमने यहाँ पे बात को चूंकि समझे नहीं तो उसे शख्सियत से मंसूब किया, इसीलिए कोई नाम भी नहीं बताया, ठीक है। अल्लाह ने तो लफ्ज खिजर इस्तेमाल भी नहीं किया, ये तो हमारे कहाँ है कि मिन इबादेना, अबाद मिन इबादेना, हमारे बंदों में से एक बंदा, अल्लाह ने तो ये कहा। हाँ, वहां लफ्ज खिजर थोड़ी आया, वो तो हमने रिवायतों में नाम रख दिया। अब वो बंदा जिस भी पोस्ट पे था उस पोस्ट का नाम खिजर कह लीजिए, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया कि क्यों कहते हैं कि वो हजरत खिजर ने उसकी रहनुमाई की। तो जो भी अल्लाह का बंदा है, बंदों में से जो भी तकवीन का काम कर रहे होते हैं, वो उस पोस्ट पे जो भी होगा, ठीक है, वो खिजर कहलाएगा। अल्लाह खैर सल्ला, ओहदों में से एक ओहदा है, तकवीनी ओहदों में से एक ओहदा है। ये बहुत सारे नाम आते हैं, अबरार है, अखियार है, फिर ये खिजर है, फिर उसके बाद कुतुब है, गौस है, ये सारे ओहदे हैं। वैसे यहाँ पे एक ज़ेली जुमला सुन ले, कलंदर जो है ये क्वालिफिकेशन है, ये ओहदा नहीं है। कलंदरियत अच्छा। जो है ये तर्ज फिक्र का नाम है
जी।
ये एक खास तर्ज फिक्र को हासिल कर लेने वाले बंदे की क्वालिफिकेशन है। और ये जो है ये दर हकीकत क्या है, मैंने जब हजूर मुर्शिदे करीम से ये अर्ज किया कि जी लफ्ज कलंदर किसे कहते हैं, इब्तदाई सवालों में से एक सवाल था, क्योंकि मैं हजूर कलंदर बाब औलिया के बारे में ज्यादा जानना चाहता था। तो हजूर मुर्शिदे करीम ने कहा कलंदर आजाद तर्ज फिक्र को कहते हैं। फिर ये इकबाल का शेर पढ़ा, कलंदर जुज दो हर्फ ला इलाह कुछ नहीं रखता, फकीह शहर कारून है लुगत हाय हिजाजी का। अब जरा गौर करें कि इसमें क्या बताया हजूर मुर्शिद करीम ने कि कलंदर किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो अल्लाह के सिवा किसी को इलाह नहीं मानता। क्या कहा? कलंदर जुज दो हर्फ, यानी वो बाकी हर चीज पे तीन हर्फ भेज चुका होता है और दो हर्फ पकड़े होते हैं उसने कि ला इला कोई इला नहीं। ठीक है, ये एक आजाद तर्ज फिक्र है जिसका ताल्लुक तकवीन के ओहदों से नहीं है। ये एक क्वालिफिकेशन है अल्लाह के करीब होने की, अल्लाह का बंदा बनने की। इसमें चूंकि वो अल्लाह के सिवा किसी चीज पे डिपेंड नहीं करते या उनको कोई वो नहीं होती डिपेंडेंसी उनके अंदर, लिहाजा वो कलंदर कहलाते हैं। अब कलंदर का लोहवी मतलब है खोंटा, गड़ा हुआ, जैसे खैमे की तनाब जिस चीज से बांधी जाती है जिस उसे खोंटा कहते हैं, यानी कोई चीज जमीन में गाड़ के आप उसके साथ रस्सी बांधते हैं। तो कायनात के निजाम में अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जो अल्लाह में इस कदर गढ़ जाते हैं कि अल्लाह उनके जरिए कायनाती निजाम की रस्सियां बांध देता है। और करें इसे कहते हैं कलंदर। ये ओहदा नहीं है, ये क्वालिफिकेशन है।
अच्छा,
और ये हर बंदा हाँ। हासिल कर सकता है, लेकिन आज तक जेर बकौल शख्स है ढाई लोग ही कलंदर में। ये तकवीनी होते हैं, ये तकवीन के होते हैं। जी तकवीन के होते हैं,
ये
है जी
मजजूब, ये भी होता है।
नहीं 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 नहीं, मजजूब जो है ये वो जिसका जहन अल्लाह में जज्ब हो जाए, वो शऊर से बेगाना हो जाए, उसको मजजूब कहते हैं।
और गौस?
गौस तो मदद करने वाले को कहते हैं, लफ्जी मानी है, लेकिन इसका असल में ये एक ओहदा है तकवीन का जिसपे हजूर गौस आजम जिन्हें कहते हैं, वो आजकल हजूर वजीर हजूरी के ओहदे पे हैं, वजीर से नीचे का दर्जा था गौस जो है। ये देखे ना कुतुब अब्दाल, ये सदर सदूर, ये सारे ओहदे हैं तकवीनी निजाम के। जी पहले हम अपने आप को तो सीधा कर लें, फिर ये तकवीन भी पढ़ लेना। अभी तो हमें कुरान ही नहीं समझ आ रहा। तो यानी अल्लाह की बात समझना तो सीख लें। अब देखे ना सीएसएस करने के बाद आप सरकारी ओहदों पे जाते हैं ना, इसी तरह अल्लाह के निजाम में पहले आपको सीएसएस करना है, फिर उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट एज ए डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर होगी ना।
जी।
इसी तरह का यूं समझें कि ये एक हकूमती निजाम जो है ये असल में तकवीनी निजाम की नकल है, यूं कह लें। आसान हो गया बात को समझना।
जी
वालेकुम अस्सलाम
सर, आपसे सवाल करना था कि आपने कहा था सुभान का मतलब होता है काम करने, ड्यूटी।
जी जी, मैंने नहीं कहा, ये अल्लाह रब्बे करीम ने देखे ना सबे लिल्लाह है माफ़ समावाते वाला। ठीक है, अल्लाह कह रहा है सभा 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 सभा, यानी कायनात में जो कुछ भी है जमीनों और आसमानों में वो अल्लाह के लिए सभे लिल्ला है, अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं। हमने यहाँ सुभान करके वो तारीफ कर दिया कि अल्लाह की तस्बीह करते हैं, अब तस्बीह का मतलब भी ड्यूटी है।
जालिमीन का मतलब क्या होगा सर?
किसका जी?
इसको ला इलाहा इल्लल्लाह सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ते हैं तो उसका क्या मतलब?
ला इलाह इल्ला अंत सुभानक कोई इलाह नहीं है सिवाय तेरे अंत सुभानक का, और सारे काम तेरे लिए। ला इलाह इल्ला अंत सुभानक का, ठीक है, तेरे सिवा कोई इलाह तो है नहीं और सारे ही काम तेरे लिए, यानी के सब तुझ पे डिपेंडेंट है, तेरे फकीर हैं। इलाह का मतलब है जिसके मोहताज हो। ये जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसका तर्जमा क्या है? आपने माबूद कर दिया। माबूद तो वो पहले भी मानते थे अल्लाह को, बच्चों के नाम अब्दुल्ला रखते थे या नहीं? इसका मतलब अल्लाह को माबूद मानते थे। इसका मतलब हुआ कि वो जो हजूर अलैहिस्सलाम ने जो तसव्वुर पेश किया अल्लाह का, वो इलाहियत का था कि अल्लाह इलाह है। वो कहते थे हमारे देवी देवता जो है ये इलाह है। हजूर कहते थे नहीं, इलाहुकुम वाहिदुन, तुम्हारा इलाह तो एक ही है और वो अल्लाह है। अब यही बात ला इलाह इल्ला, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक का, और सारे काम तेरे लिए हैं, यानी सारे तेरे मोहताज हैं और सारे काम तेरे लिए तेरी खातर हैं, ठीक है। इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, और मैं तो गड़बड़ करने वाला। एक लफ्ज है गड़बड़ी, एक रबड़ी होता है, गड़बड़ी होता है। यानी चीजों को ठिकाने पे ना रखने वाला, किसी चीज को उसकी असल जगह से हटाना जुल्म कहलाता है। तो ये अल्लाह तो किसी चीज को गलत जगह पे नहीं रखता, ये करतूत किसके हैं? इंसान के, इंसान से चूक होती है ना। इंसान को हुक्म अल्लाह ने दिया कि अपना ध्यान मेरी तरफ रखना, क्यों? क्योंकि तुम मेरे नायब हो। अब नायब का ध्यान अपने असल बॉस की तरफ ना हो और वो अपनी अपनी मर्जियों और अपनी खिलवाड़ करे, तो जाहिर है बॉस पकड़ेगा नहीं उसको। अब आदम ने क्या कहा? रब्बाना ज़लमना अनफुसना, ऐ मेरे, हमारे परवरदिगार, ऐ हमारे रब, हमने अपने अनफस पर जुल्म किया। क्या जुल्म किया? हवा को जूते मारे नहीं, तो लफ्ज जमा जलम ना, हमने जुल्म किया। तो क्या जुल्म किया उन्होंने? तो किसी की भैंस खोल ली, किसी की बकरी चोरी करके ले गए, क्या किया? ऐसा वैसा कुछ नहीं पता चलता। तो जो तवज्जो देने से पता चलता है वो ये कि भाई उन्होंने ध्यान अल्लाह से हटाकर तो शैतान के बहकावे में आने दिया और शैतान उन्हें दरख्त के करीब ले गया। तो अल्लाह से तवज्जो हटना जुल्म कहला रहा है। इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं तो, मेरा ध्यान हट जाता है, मैं तो हूं ही उनमें से जिनका ध्यान हट जाता है। देखे ना, जब आप हजरत यूनस ने अपनी साजिशी का इकरार कर लिया कि कोताही हुई है मुझसे, मैं तो हूं ही कोताही करने वालों में से, तो अल्लाह रब्बे करीम ने क्या कहा? निकाल दो इस मछली को, कहा कि इसे छोड़ दो और करें। अब वाजे हो गई बात?
शुक्रिया सर।
आपका शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम।
सर मैं आपकी किताब पढ़ रही थी, बातें मेरे मुराद जी,
जहे नसीब जी,
سر اس نے آپ نے فرمایا کہ ابا حضور سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا کام کرتے ہیں اور پھر بھی اتنا فریش رہتے ہیں, آپ تھکتے نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہے.
جی میں خوش رہتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں خوش رہتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے.
جی جی سر.
دیکھیں
سر, سر میں نے یہ پوچھنا تھا, سوال میرا یہ تھا.
جی جی.
کہ وہ تو بہت بڑی ہستی ہے, مجھے تو پتہ چل گیا کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے. ہم کیسے جان پائیں, عام سے بھی عام بندے ہیں ہم, کیسے جان پائیں کہ ہمارے اللہ ہمارے راضی؟
ایک چیز ہے یقین کرنا.
جی جی.
اگر آپ اسی لمحے بس یہ یقین پکڑ لیں, کیا بھئی میں اللہ کی انتہائی محبوب مخلوق ہوں. کتنی محبوب, اب ذرا سا غور کریں کہ شیطان نے آپ کے خلاف ایک لفظ بولا کیا کہ میں اس سے اچھا ہوں. اللہ نے اس کو مردود کہہ دیا. کیا ہمیں یہ احساس اپنے اندر خود پیدا کرنا ہے؟ جب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ میں اللہ کی انتہائی چہیتی مخلوق ہوں تو اللہ آپ سے راضی راضی ہے کہ نہیں؟ کیا کہا, اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ایک ماں کبھی بچے سے ناراض ہوتی ہے؟ آپ کو اللہ پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے جتنا اپنی اماں پہ؟ کیا مطلب ہوا؟ ایک ہی مطلب ہوا کہ ہمیں یقین نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جب آپ یقین کر لیں گے کہ اللہ آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ, 70 سے زیادہ کیا ہوتا ہے, 71 72 73, یہ چلتے چلتے کروڑوں اربوں خربوں تک جائے گی بات. اتنا پیار کرنے والی ہستی کے بارے میں یہ گمان رکھنا, یہ آپ کا گمان ہے نا. آپ نے مان لیا کہ یہ میرا رب مجھ سے راضی ہے. ابا نے کیا لفظ بولے, میں نے کیوں دہرائے وہ الفاظ؟ ابا نے کہا کیونکہ میں جانتا ہوں, یعنی مجھے یہ یقین ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کوئی ایسا کام کر ہی نہیں رہے جس سے اللہ ناراض ہو. دیکھیں نا, ایک بچہ ہے وہ سارے وہی کر رہا ہے کام جو اماں چاہتی ہے, تو بتائیں اس بچے کو یہ یقین کون دلائے گا کہ بھئی تمہاری اماں تم سے بہت خوش ہے؟ بچے کو خود نہیں پتا بھئی؟ اس بچے کو ہی تو پتا ہے. کیوں جی؟
ہاں سر آپ نے ٹھیک سمایا, لیکن انسان ہے, کوئی کمی بیشی تو ہو ہی جاتی ہے.
تو ماں کیا کرتی ہے؟ وہ کمی بیشی پہ آپ کو گھر سے نکال دیتی. نہیں مطلب ہے کمی بیشی ہوتی رہتی ہے, ہم ہیں ہی مخلوق. ٹھیک ہے نا. حضرت یونس نے کیا کہا, انی کنتم من الظالمین. تو کیا ہوا بھائی, کوتاہی ہو جاتی ہے, توبہ استغفار کس لیے؟ آپ اللہ کو سوری 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 کہتے جائیں اور اپنا کھیلتے جائیں. دیکھے نا, ایک بات غلط ہو گئی ہو گئی, جان کے تو نہیں کی. جان کے کی ہے تو اس کی سزا ہے, اس کے نتائج ہے. ٹھیک ہے نا. ایک بات غلطی ہو گئی, سوری بول دیا. سوری جی, آپ نے جان کے نہیں کیا, شرط کیا ہے؟ اب یہ مطلب ہے کہ وہ کھلواڑ ہے نا, جو ہمارے بزرگ جو ہیں بڑے, وہ جب ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے تو اس سے پہلے کے لوگ کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے, کرے بھی جا رہے ہیں اور چڑھاوے بھی چڑھا رہے ہیں. اب ہم بھی انہی کی اس ڈگر پہ چلے ہوئے لوگ ہیں, بجائے اس کے کہ ہم اللہ سے اپنے تعلق کو, اس کو محسوس کرنا بہت آسان ہے. میں آپ کو ایک حل بتا دیتا ہوں, ذرا تجربہ کر کے دیکھیں. حضور مرشد کریم نے کئی بار فرمایا کہ جب بھی آپ وضو کر کے نماز کے لیے جائیں تو آپ مصلی بچھا کے اس پہ بیٹھ جائیں, और एक 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके ये तस्वर करें कि मुझे मेरा अल्लाह जो मुझसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी शफकत से मुझे देख रहा है। ये एहसास अगर एक दफा उजागर हो गया तो आपको अल्लाह का मुस्कुराता हुआ चेहरा हर वक्त दिखेगा। यानी आपके अंदर ये एहसास होगा कि भी मेरा रब मुझसे राजी है। वो देखो, मैं जो भी कर रहा हूं अल्लाह वास्ते कर रहा हूं, लिहाजा अल्लाह वास्ते कर रहा हूं, लिहाजा वो मुझसे खुश है। एक बच्चा अपनी अम्मा के काम से लगा हुआ है, उस मदद कर रहा है अपनी अम्मा की, हालांकि क्या मदद कर सकता है वो, लेकिन वो अपने छोटे छोटे हाथों से लगा हुआ है। अच्छा, माँ देख देख के खुशी होगी ना कि ये बेचारा है किसी जोगा नहीं और कर रहा है मेरी मदद। आप खुद को इतना बच्चा माने तो सही। भाई हमने तो अल्लाह मियां को डिक्टेशन बोलने का काम लिया हुआ है, ये कर दे और ये मत कर, हमने खुद को अल्लाह के हवाले किया ही नहीं। लिहाजा ये हमें, हमारा जमीर कचोके लगाता है और वो परेशानी पैदा करता है। अगर आपके जहन में आ जाए कि भाई मैं अल्लाह की इंतहाई चहेती मखलूक हूं और आप इस कैफियत को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक हो गया
जी सर, बहुत शुक्रिया सर। एक और सवाल है।
इरशाद
सर, हमारे जो भी हमने पढ़ा है या सुना है, हमारे जिन में यही बताया गया है कुफारे मक्का, यानी काफर जो इस्लाम कबूल नहीं करते वो काफर है। लेकिन मैं सोचती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ वही काफर है, जो भी कुफराने नेमत की तो है ना, नेमत का कुफरान करे वो भी काफर ही हुआ ना।
हाँ जी वाह, बहुत बहुत खूब। अब सुने जरा, काफर इनकार क्यों करते हैं? जरा अगला सवाल, एक बंदा किसी अच्छी बात से इनकार कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अपनी मर्जी करना चाहता है। तो जब हम अपनी मर्जी कर रहे हैं तो हम क्या हुए? सोच है ना। देखें, अपनी मर्जी करना, अबू जहल को क्या तकलीफ थी? वो कहता था हजूर अलैहिस्सलाम को कि तुम सही कह रहे हो। यानी वो हजूर अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहता था कि आप जो भी कह रहे हैं, जो भी फरमा रहे हैं दुरुस्त होगा, लेकिन क्या कहता था, लेकिन अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो मेरी दुकानदारी ठप हो जाएगी। लिहाजा वो अपनी मर्जी करता था। अल्लाह ने इसी बात पे उसका लकब अबू जहल करार दे दी। क्या अजीब जाहिल है, पता भी है फिर भी अपनी मर्जी कर रहा है। अब ये जो आपने बात छेड़ी के कुफारे मक्का, ये हमने एक इस्तलाह घड़ ली उन लोगों की जो हजूर को नहीं मानते थे। भाई क्यों नहीं मानते थे, अगला सवाल है। इसलिए नहीं मानते थे कि उनके मफादात पे जर्ब पड़ती थी। देखे ना वो क्या कहते हैं, अब ये जो भी बंदा कहता है रूल ऑफ लॉ, बस वही मुसीबत में आ जाता है। भाई अल्लाह के कवानीन की अतात और ताबेदारी करना ही सबसे सबको दुश्वार है ना। फकीरी क्या है? फकीर आपको यह एहसास दिलाता है कि आप ला इलाह कहने के बाद अल्लाह के मोहताज हो गए, आप अल्लाह के फकीर हैं, लिहाजा उसी की माने, बात खत्म हो गई। लेकिन दुनिया के लिए शुरू हो गई, दुनिया को बहाना मिल गया, वो आगे से तरह तरह की बातें किए जा रहे हैं, बातें किए जा रहे हैं, बातें किए जा रहे हैं, बात को समझ के अपना कोई नहीं रहा। गौर करें, जब आपने कलमा पढ़ा तो आपने अल्लाह को इलाह माना, जब आपने अल्लाह को इलाह माना तो आप क्या हुए? आप अल्लाह के फकीर हुए या ना हुए? इसी को फकीरी कहते हैं। और यहाँ ये फिक्रो फाका और फकीरी पे इतनी लंबी चौड़ी डिबेट्स और इतनी किस्से कहानियां के वो कहता है अगला कि यार पता नहीं फकीर कोई खास ही जैनर है, लिहाजा वो तो मैं हो ही नहीं सकता, लिहाजा कोई भी नहीं हो रहा। ये सारा हमारे शऊर का खिलवाड़ है। जब आपने कलमा पढ़ा और अल्लाह को इलाह मान लिया, और उस तरह इलाह मानना जिस तरह अल्लाह का रसूल हजूर अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, अपनी मर्जी का इलाह नहीं मानना, अपनी मर्जी करने वाले को अल्लाह ने काफर कहा है, उसी में कुफरान भी आ गया। कुफरान यानी आप एक चीज को अल्लाह कह रहा है इसे इस्तेमाल करो, आप कहते हैं नहीं मैं क्यों करूं, तो ये कुफराने नेमत हुआ। अल्लाह ने आपको बसारत दी, अल्लाह ने कहा इसको फैलाओ यानी कि बसारत की रेंज बढ़ाओ, आप कहते हैं नहीं मैं तो सिर्फ मादी चीजें देखूंगा, बहुत जोर लगा तो आपने दूरबीन बना ली के जी मैं देख रहा कितना दूर तक देख रहा हूं, और ज्यादा आया तो आपने टेलीविजन बना लिया कि जी मैं दूरदर्शन कर रहा हूं। तो जो अल्लाह ने आपसे कहा कि आप अपनी सलाहियतों को बढ़ाएं, अब अल्लाह ने आपको इंस्पायर किया कि आप उड़ सकते हैं, ठीक है, आपने क्या किया एक मशीन बनाई और 300 बंदे भर के साथ उड़ा के दिखा दिया, आगे से अल्लाह का मुंह चढ़ा रहे हैं कि देखो मैं उड़ के तो दिखा रहा हूं, और भाई तुम कब उड़ रहे हो, तुम तो मशीन उड़ा रहे हो, तुम्हारे अंदर अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी हुई है कि तुम मशीन उड़ा सकते हो, खुद नहीं उड़ सकते। ये सब अल्लाह की बात को ना समझने के शाखसाने हैं। अल्लाह हमसे क्या चाहता है कि हम अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करें, और हम कहते हैं कि बस वो गोरे हैं ना वो करेंगे अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल, हम क्यों करें।
कामन को काफर भी कहते हैं और उनकी चीजें भी इस्तेमाल करते हैं
जी, गौर करें। यानी मैंने कमीज पहनी है, इसके ऊपर ये जो बटन लगे हुए हैं ये तक उन्हीं के बनाए हुए हैं, गौर करें
जी।
और चल उठते बैठते हम उन्हें बुरा भी कह रहे हैं और उन्हीं की, अब ये कंप्यूटर में इस्तेमाल कर रही हूँ किसने बनाया, ये बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हैं किसने ईजाद की, वो जी हम मुसलमान थे, हाँ बेशक मुसलमान थे, अब हैं तो नहीं ना। अब अलजबरा जो है ये मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारज्मी ने इजाद किया या सामने लाया, क्या था, इट इज अ साइंस टू फाइंड द अननोन क्वांटिटी। वो इल्मो आगही के किस दर्जे पे मुतमक्किन था कि नामालूम मकदारें मालूम करने का फार्मूला दे गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये उसने दी ना, अब उसकी वजह से आज आप साइबर एज में पहुंच गए। लेकिन क्या हुआ, वो हम चुके इंसान बेसिकली इन्नल इंसान ल रब ही लकनूद, ये अपने रब का ना सिपास गुजार है। मैं इसका तर्जमा कभी कभी करता हूं कि ये असल में अल्लाह कह रहा है कि ये मोहसिन कुश है, ये जो इस पे एहसान करता है ये उसी के खिलाफ हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये शैतान के चुंगल में है, ये शैतानी चुंगल से निकलेगा तो अल्लाह का सिपास गुजार हो जाएगा, एहसान मंद हो जाएगा, शुक्र गुजार हो जाएगा, फिर अल्लाह की हर अता को ये उस तरह इस्तेमाल करेगा जिस तरह अल्लाह करवाना चाहता है। ये है सारा फकीरी का और ये रूहानियत का और ये सलासल के सबक का खलासा। वो ये चाहते हैं कि आपका ध्यान अल्लाह की तरफ लग जाए और लगा ही रहे, आप अपनी मर्जियों से बाज आ जाए। अल्लाह ने क्या कहा, मा तशाउना इल्ला अन यशाउल्लाह, तुमको नहीं चाहना चाहिए सिवाय उसके जो अल्लाह चाहता है। हमने इस आयत का तर्जमा ही बिगाड़ दिया कि तुम चाह नहीं सकते सिवाय उसके जो अल्लाह चाहता है, लिहाजा मैं जो भी कर रहा हूँ वो अल्लाह के चाहने पे कर रहा हूँ। और करें, बात हमने कैसे बिगाड़ दी। अल्लाह कहता है मा तशाउना इल्ला अन यशाउल्लाह, यानी तुम्हें नहीं चाहना चाहिए सिवाय उसके जो अल्लाह चाहता है। यानी हमें अपनी चाहतों को अल्लाह की चाहत के ताबे रखना है, बस इतनी सी बात है। लेकिन हमें अपनी करने से ही फुर्सत नहीं है। बात लंबी हो गई, माफी चाहता हूँ, सॉरी।
बहुत शुक्रिया, बहुत ठीक हो गया।
जी जनाब अली। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है इरफान
जी? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाए, आप ठीक ठाक हैं?
मैं बड़े मजे में जी।
सर ये जो आपने आयत कोड की है, तो रूहानियत में कहा जाता है ना डिपेंडेंट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट डाइट जो है।
जी 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 जी,
तो इसी के बारे में कहा जाता है कि आप जो डिपेंडेंट लाइफ गुजारे हैं।
जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, यानी अल्लाह पे डिपेंडेंसी ही इंसानियत है, अल्लाह पे डिपेंडेंसी ही रूहानियत है। मैंने खुलासा ही कर दिया।
आओ जवाब आप
अल्लाह का शुक्र है कि ये आया। या ये बात आई।
अगर मैंने जो है वो देखा कि जितने भी अल्लाह वालों की बातें हैं वो असल में कुरान की ही बातें हैं जो उन्होंने अपने अल्फाज में बयान की।
आहा, वाह जी वाह। यानी देखे ना जी, आखिर सुप्रीम कलाम तो अल्लाह ही का है, बंदे तो सिर्फ अल्लाह की कही हुई बात को चगल सकते हैं। ये चगलना समझते हैं आप, चुंगम की तरह चबाना।
जी 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 सर,
इसी से लग चुगल हो रही है। भाई इधर की बात उधर लगाना चुगल हो रही है ना, तो हम अल्लाह ही की बात को बिगाड़ के चबा के अपनी मर्जी की शक्ल दे के बताते हैं, तो क्या करते हैं इसे? आप समझ आया क्यों लग चुगल बोला?
और सर ये आजकल जो है कुरान की को क्लासेस वगैरह कर रहे हैं कि नहीं आप?
मैं आजकल कुरान पढ़ रहा हूँ।
अच्छा, वो कोई रीडिंग वगैरह नहीं कर रही?
नहीं, मतलब वो एज सच रीडिंग तो नहीं हो रही, लेकिन जनरली लोग सवाल जवाब होते रहते हैं।
अच्छा अच्छा ठीक है। वो एक भाई पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब जो है कोई करवा रहे हैं, मैंने कहा मैं पूछ लूंगा अगर कोई वो करवा रहे हैं।
उसमें असल में इतना कुछ बोल दिया ना, तो अब इसका तरीका मैंने ये रखा है कि पहले आप किताब कुरान हकीम और लाशऊर को सबकन सबकन पढ़ लें, फिर मैं आपको उसका तरीका अर्ज कर देता हूँ कि भी किस तरह एक एक चैप्टर, ये 24 पॉइंट्स उसमें असल में एलैबोरेट किए, कि वो 24 पॉइंट्स जो हैं वो आपके जहन में क्लियर हो जाएं, तो फिर आप 30वां पारा जो है वो मेरे साथ पढ़ लें। मैं उसके लिए इंतज़ाम किए बैठा हूँ कि जो बंदा भी करना चाहता है मैं उसको एक एक सूरत जो है, जब वो जहन इस काबिल हो जाता है तब, तो एक एक सूरत जो है उसकी रिकॉर्डिंग जो है जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो शेयर कर देता हूँ। बस ये कर रहा हूँ।
पर वो जो रोडवर्ड्स पे काम हो रहा था।
अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हो ही गया। मैं नून पे हूँ, नून की पट्टी पे काम कर रहा हूँ।
अच्छा
जी, वो इंशाल्लाह शेयर करेंगे आपसे, जरा हफ्ते 10 दिन में हो जाएगा बाकी जो है। ठीक बस जी, ख्वाहिश और काविश, ख्वाहिश भी और काविश भी, ये है कि अल्लाह की बात समझने में कुछ थोड़ी सी जो सहूलत हो सके वो लोगों तक पहुंच जाए। बाकी समझना लोगों ने, समझाना अल्लाह ने। अब माशाल्लाह आप भी लगे हुए हैं, आप भी तर्जमे कर करके शेयर करते हैं। ये बड़ी सआदत है हमारे लिए कि हम अल्लाह के कलाम के साथ मस्त तो है ना, एक तरह से लगे तो हुए हैं ना, उनका तवज्जो है तो सही ना, तो ये भी बड़ी सआदत है जी। बहुत ही बड़ी किताब है, बहुत ही बड़ी किताब है। देखे ना, वो है वही कुरान, क्या वही है। इसको शौरी तर्जों में समझना एक दर्ज है, फिर इल्हामी तर्जों में समझना दूसरा दर्ज है, फिर तीसरे दर्जे पे आप इसे वही की तर्जों में समझते हैं। इल्हामी तर्जों में समझने से मुराद यह है कि आप लौह कलम जब पढ़ेंगे तो आपका जहन इल्हामी तर्जों में ढलेगा। जब आपको मुर्शिदे करीम के तसव्वुर कर करके वो निस्बत हासिल होगी जिसमें आपको हजूर सलाम की तर्ज फिक्र हासिल होना शुरू हो जाएगी, या उसका कोई मस आएगा, तो फिर जो आप समझेंगे वो असल में कुरान को वही की तर्जों में समझेंगे। ये जो बात कही जाती है ना कि भाई एक दर्जा ये है कि आपको पीरो मुर्शिद पढ़ा दें, दूसरा दर्जा ये है कि आपको हजूर अलैहिस्सलाम पढ़ा दें, तीसरा दर्जा ये है कि अल्लाह खुद पढ़ा दे। जब आप कोशिश करते हैं शौरी तौर पे तो आप खुद समझ रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं। फिर रफ्ता रफ्ता आप लगे रहते हैं तो अल्लाह इंस्पायर करना शुरू कर देता है। अल्हामहा फजूरहा व तकवाहा, इल्हाम में दोनों बातें सामने आती रहती है। उसके बाद का दर्जा है वही का, और कुरान वही है। इसको समझने के लिए हमें वही को समझने वाला ज़हन दरकार है। उस ज़हन को तैयार करने का सिलसिला रूहानी सलासल कहलाते हैं ये सारे। उनका असल टारगेट ये होता है। ठीक हो गया ना जी? ठीक
अक्सर जब करते हैं ना या यो हल्ला जीना आमनू का तर्जमा तो यही लेते हैं, ए वो लोग जो मुशाहदा करके ईमान लाए हैं।
जी हाँ, बिल्कुल सही
सर,
करते।
ये तो मुशाहदा जो
अरे
हम
भाई, लफ्ज है आमनू, लफ्ज है आमनू,
आमन
अमन में आ गया, क्यों नहीं
अमन
करते?
में आए
अमन का बात है
इन्दा।
जब बात मानते हैं आप, जब बात मान ली जाती है तो अमन हो जाता है। देखे ना, आपका बच्चा बात नहीं मान रहा, घर में किलकिल मची हुई है, जो ही बच्चे ने बात मानी अमन हो गया। जब बंदा बात मानता है तो अमन हो जाता है। ठीक है, अब ये सारे अदबियत कहलाएंगे, ये सारे अल्फाज अदबियत में आते हैं। यानी एक बात को अच्छी तरह बयान करने के लिए आपका ध्यान के भी मुशाहिदा करके मानना, ये तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, हमारे यहाँ आमनू का तर्जमा किया गया ईमान वालों, और जहां कुरान में लफ्ज ईमान आया वहां उसका तर्जमा किया दाया हाथ। गौर करें, तो ये जो तराजम है ना, इनका हजूर मुर्शिद हजूर कलंदर बाबौलिया ने इरशाद फरमाया है कि आप कुरान को कुरान के अल्फाज में खुद समझने का जतन करें। अब मैंने देखे ना आमनू का, आपको उसके लफ्जी मतलब अमन से लफ्ज बना है, अलिफ मीम नून वाव, आमनू अमन में रहो, लफ्जी तर्जमा। आमनू का तर्जमा जाहिर है कैसे होगा, अमन बात मानने से होगा। अब जो बात आप तय कर लेते हैं, जो बात आप मान लेते हैं, उसको कहा, उन सब लोगों को कहा जो कोई बात मानकर उसको तय कर लेते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या कहा आगे, आमिलू सालिहात। इस पे इस्लाह कर कर के अमल करो, हमने कर दिया अच्छे काम करो, आमेलू अमल करो, सालेह कर के यानी उसमें इस्लाह कर कर के, यानी कीप ऑन इम्प्रूविंग इट। जो आपने डिसाइड कर लिया, जो आपने तय कर लिया, यानी जो बात तस्लीम कर ली, जो बात आपने मान ली, अब उस पे अमल करना। ये है सूरह असर का सारा लुबे लुबाब और खलासा, और आगे बताया कि तवासो बिल हक के यानी रियलाइजेशन के साथ, रियलिटी के साथ, रियलिटी को पेश नजर रखते हुए, रियलिस्टिक अप्रोच के साथ, व तवासो बिल सब्र यानी इस्तकामत के साथ, पामर्दी के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ, उस पे लगे रहो। अगर ये नहीं करते तो तुम खसारे में। कुरान ने तो इस तरह से इसे वाजे किया, ठीक हो गया जी?
जी सर, ठीक हो गया।
चलो, काफी है मेरा ख्याल है।
अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम।
सर मैं शहनाज बात कर रही हूँ।
जी जी फरमाइए।
सर ये आप दो बुक है मेरे पास जो मैं पढ़ रही हूँ, एक तो पुराने हकीम और दूसरी लोहे कलम। अब लोहे कलम वाली जो बुक है वो मेरी आज ऑफिस में रह गई, वरना मैंने काफी निशानात लगाए हुए थे, वो मैंने आपसे डिस्कस करने थे।
जी हाँ, तो आप किसी वक्त जब भी आपके पास वो किताब दस्तयाब हो उसे लेके आप मुझसे बात करें, इंशाल्लाह टाइम ले लें, मैं हाजिर हूँ। ठीक है
जी, शुक्रिया बहुत बहुत। और ये जो मैंने कुरान हकीम के 47 पेजेस पढ़ लिए हैं, इसको पढ़ने के बाद जैसे मुझे लग रहा है कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं।
चलो शुक्र है, ये एहसास तो हुआ ना। ये बड़ी सआदत है मेरे लिए, बड़ी सआदत है जी, ये अल्लाह का इनाम है, शुक्र है परवरदिगार का। देखें ये सारा मुर्शिदे करीम का तसर्रुफ है, उन्होंने ये लिखवाई, ये मेरे सर एक सेहरा बांध दिया उन्होंने, लिहाजा ये सारा एक सहूलत है कि लोगों को किसी तरह इस तरफ मतवज्जो किया जाए कि कुरान को समझने की एक खास अप्रोच चाहिए।
जी बिल्कुल,
तो वो अप्रोच अगर बन जाएगी तो इंशाल्लाह आपको कुरान ज्यादा बेहतर तौर पे समझ आएगा। बस इतनी सी ख्वाहिश है, इतनी सी काविश है।
और दूसरी चीज को समझना चाहते थे, और उसके लिए मैंने कई तफासिल पढ़ी थी, और बल्कि मैं व्हाट्सएप के लोगों को तफासिल पढ़ाती भी रही हूँ। उससे ही सवाल कर रही थी कि वो जो था वो माजी था, वो क्या था हमारा और हम क्या कर रहे थे।
कोई नहीं, अल्लाह खैर करे, जब भी बात अल्लाह समझाना चाहता है। देखें आपका ये खलूस, क्योंकि आप समझना चाहते थे, उसके लिए राहें अल्लाह ने आसान कर दी। अल्लाह रब्बे करीम ने क्या कहा है, सो बोलो ना, मैं तो आसान कर देता हूँ राहों को। जाहिदू फीना, वो जो कोशिश में लगे रहते हैं मैं उनके लिए राहें आसान कर देता हूँ। ये सब अल्लाह का किया हुआ इंतजाम है जिसके तहत ये सारा हो रहा है, ठीक है ना जी। तो आप जब भी करना चाहें आप मैसेज करके तो फरमा दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह हाजिर हो जाऊंगा, फिर ये लॉ कलम के जो भी सवाल जवाब होंगे आपके मैं अर्ज कर दूंगा, ठीक है। चले अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज।